रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा साई राम। हिंदी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आप बाल संत श्री ऋतुराज जी महाराज से राम कथा की अगली कड़ी सुनेंगे। कथा के बाद कुमारी प्रियंका एक कहानी प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम की समाप्ति श्री कैलाश खेर के एक गीत के साथ होगी। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं श्री राम कथा से।
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम केवल उस युग में ही प्रासंगिक नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि राम केवल उस युग में प्रासंगिक थे या राम कथा केवल उस युग में प्रासंगिक थी, भगवान बाबा कहते हैं कि नहीं, राम कथा आज भी प्रासंगिक है। और आज लोगों ने राम कथा की प्रासंगिकता को मानना समाप्त कर दिया है, इसलिए घर बिखरते जा रहे हैं, घर नष्ट होते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, घर समाप्त होते जा रहे हैं, नए नए मकान बन रहे हैं। इंदौर में देखिए, बेंगलोर में देखिए, बंबई में देखिए, क्या मकान बन रहे हैं, पर मकान में घर कहीं नजर नहीं आता, मकान में घर जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। राम कथा हमें घर बनाने की प्रेरणा देती है कि यह घर कैसे बनता है। ये जो लोग दंगे फसाद की बात करते हैं, भगवान बाबा कहते हैं कि कैसे लोग दंगा फसाद करते हैं, कैसे लोग लड़ाइयां लड़ते हैं, कैसे आतंकवाद होता है, कैसे निरीह और निरपराध लोगों को मारते हैं, पर उन्हें क्या पता कि एक आदमी कैसे अपना जीवन बिताता है। एक बहन जी मिली हमें, महाराज ये मेरा कुत्ता है। हमने कहा बहुत अच्छा है बहन जी, आजकल साहब कुत्ते जो है वो गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों को फुटपाथ नसीब नहीं हो रही है। हमने कहा बहुत अच्छा है बहन जी, बहुत। महाराज ये 5,000 रुपए महीने के बिस्किट खाता है। हमने कहा धन्य है इस कुत्ते को, 5,000 रुपए महीने के बिस्किट खाता है। गरीब आदमी 5,000 में पूरा घर चला लेता है, लड़की की भी शादी कर देता है 5,000 में, पूरा जीवन 5,000 में निर्वाह कर लेता है, और यहां कुत्ते का पेट 5,000 में भर रहा है। कमर टूट जाती है एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। एक आदमी पूरा जीवन निकाल देता है घर बनाने में, पूरा जीवन उसका निकल जाता है घर बनाने में। और ये जो लोग हाथों में बंदूक लेकर आते हैं, इन्हें एक क्षण नहीं लगता, वो घर मिटा देते हैं, वो घर समाप्त कर देते हैं। प्रासंगिक है राम कथा आज के युग में। और राम का अभाव नहीं है, राम तो हर जगह सर्वत्र विद्यमान है, राम तो हर स्थान पर विद्यमान है। हमारी दृष्टि तो हनुमान जैसी हो, हमारी दृष्टि तो अंगद जैसी हो, हमारी दृष्टि तो भरत जैसी हो, हमारी दृष्टि तो लक्ष्मण जैसी हो, हमारी दृष्टि बदली है, राम नहीं बदले हैं, राम वही है। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस्य जीव सचराचर, माया बस्य जीव अभिमानी, माया बस्य जीव अभिमानी, इस बस्य माया गुण खानी। मनुष्य माया के वश में है और माया राम जी के वश में है। और राम रावण युद्ध में भी हमें एक शिक्षा मिलती है, राम जी ने कोई रावण से जबरदस्ती नहीं की, जबरन लड़ने नहीं गए। रावण ने कितनी गलतियां करी देखिए, उसकी गलतियां गिनी। पहली गलती तो यह कि उसकी बहन आई विवाह करने और वो भी जबरदस्ती विवाह करने आई, जबरन कोई विवाह होता है क्या? और क्या कहती, तुम समनर नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचो बिचारी। तुम्हारे समान राम कोई नर नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, लगता है विधि ने यह संयोग रचा है। राम जी समझ गए कि यह इसकी असलियत नहीं है, यह इसकी वास्तविकता नहीं है। भगवान ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, सामनी सुभावनी होठाए यहां पास पास, ये जो भामनी है ना सुरामनी, ये मेरी पत्नी है, लेकिन एक भैया है जिनका विवाह होना शेष है, हो तो चुका है पर वन में अकेले हैं, और हमारे यहां तो दो दो तीन तीन हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप जाकर निवेदन करें, लक्ष्मण जी के पास गई, तुम्हारे भैया तो शादी करना नहीं चाहते, मैं कर लूं, आपसे विवाह तो कैसा रहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा पर मैं तो नहीं करना चाहता। बोले नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हारी भाभी को मार डालूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा वाह जबरदस्ती, चोरी ऊपर से सीना जोरी। लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों काट दिए। शूप नखा स्वच्छंदता का प्रतिनिधित्व करती है। शूप नखा यानी वर्तमान में जो फिल्में आ रही हैं वे सब शूप नखा हैं। जो संस्कृति हमारे घरों में लाई जा रही है ये वही है, जो नहीं है वो दिखाया जाता है। और बाबा आधुनिकता के विरोधी नहीं है, बाबा स्वच्छंदता के विरोधी है। स्वतंत्रता का विरोध तो हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल नहीं किया। अरे हमारे यहां तो स्वयंवर की प्रथा थी कि बड़े बड़े वीर बैठते थे और वह युवती जिसे चाहे उसके गले में वरमाला डालती थी। स्वतंत्रता तो हमारे देश में स्त्री को सदैव से मिली है। गार्गी और याज्ञवल्क का प्रसंग तो सुनिए। गार्गी कहती है कि याज्ञवल्क यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरणम असना विरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि हिमनीषी परिभुस्वयं। हे याज्ञवल्क, जनक की सभा में गार्गी याज्ञवल्क को कहती है कि यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मेरे आश्रम में तुम झाड़ू लगाने का काम करना। और याज्ञवल्क चुनौती स्वीकार करते हैं, शास्त्रार्थ होता है। हमारे यहां तो नारी को नारायणी माना गया है। हमारे विचारक तो कहते हैं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। लेकिन शूपनखा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वह स्वच्छंदता का प्रतिनिधित्व करती है। और शूपनखा के भाइयों ने, हरदूषण ने जब राम जी के सौंदर्य को देखा तो शूपनखा से कहा कि रहने दे, ये अच्छे घर के लड़के दिखते हैं, सभ्य लड़के दिखते हैं, गलती तेरी ही रही होगी। लेकिन उसने भाइयों को विवश किया, मरने पर युद्ध किया, मारे गए। तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, सबसे पहले हनुमान जी के बाद अंगद को भेजा। अंगद ने भी रावण को उपदेश दिया पर रावण तो मरने मारने पर ही उतारू है, वो चाहता ही नहीं कि किसी बातचीत से हल हो जाए। कई लोग होते हैं उन्हें बातचीत में कोई आस्था ही नहीं होती, बातचीत में कोई श्रद्धा ही नहीं होती, बातचीत में उनका विश्वास ही नहीं होता। वो चाहते ही हैं, उनका स्वभाव ही होता है कि युद्ध हो ही जाए। और मेघनाथ ने भी रावण को समझाया कि पिताजी राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। पिताजी राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो नारायण है, स्वयं नारायण आपसे युद्ध के लिए आए हैं। पर मेघनाथ की बात सुनकर रावण कहता है शायद तुम डर गए हो। मेघनाथ ने कहा मैं डरा नहीं हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। पिताजी अभी तक आपने लोगों से युद्ध किया है, राक्षसों से युद्ध किया है, देवताओं से युद्ध किया है, वानरों से युद्ध किया है, पर अब की बार भगवान स्वयं लड़ने के लिए आए हैं, स्वयं धर्म लड़ने के लिए आया है, स्वयं सत्य लड़ने के लिए आया है। पर मेघनाथ ने एक ऐसी बात कह दी, आप गौर से सुने, ध्यान से सुने। जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी और मंदोदरी ने मेघनाथ को एक सलाह दी कि सुन बेटा पिताजी नहीं मानते तो तू तो युद्ध से अलग हो जा, तो मेघनाथ ने जो कहा वो कितनी अच्छी बात कही कि मां मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी अधर्म के लिए लड़ रहे हैं और राम जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी अनीति के लिए लड़ रहे हैं, राम जी नीति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मां गौर से सुनो, जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता भगवान उसका सम्मान स्वयं नारायण भी नहीं करते। जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान भगवान भी नहीं करते। इसलिए मां जैसे राम जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो मेरा धर्म है पिता का साथ देना। और जो पुत्र आपत्ति के समय में पिता को छोड़ देता है उस पुत्र को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इस समय मेरे पिताजी आपत्ति में हैं, पर आपत्ति में इसलिए है कि जबरदस्ती आपत्ति में आए हैं, जानबूझकर आपत्ति में आए हैं। ट्रेन में कुछ लड़के चढ़े, पहली बार बैठे थे ट्रेन में, उनने चेन देख ली, जंजीर, उन्होंने कहा इसको खींचने से क्या होता, बोले गाड़ी रुक जाती, जुर्माना होता, कितना, बोले 250 रुपए। कहा खींच के तो देखे, एक बार देखे तो सही खींच के। उन्होंने कहा अरे क्या आवश्यकता है, खींचोगे क्यों, चार लड़के थे, क्यों खींच रहे हो भैया, कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़े बोले देखे तो सही, जब बैठ लिए तो इसे भी खींच लो, क्या दिक्कत है। अगले ने कहा कि 250 रुपए मेरी जेब में है, तुम चिंता मत करना। बोले ठीक है खींच देते। तो चौथा बोला कि खींचकर ये जो बगल में अंकल जी बैठे हैं ना, आंख बंद करके इनका नाम ले देंगे, गोविंद आए। तो एक ने चेन खींच दी, ट्रेन रुकी, पुलिस आई, क्या हुआ क्या हुआ। बोले साहब ये जो अंकल जी बैठे ना बूढ़े, इन्होंने खींची है चेन। अब अंकल जी ने कहा बताओ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पर अभी चार चार बोल रहे हैं। पुलिस वाला बोला कि अंकल आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। अंकल ने कहा हरकत क्या कर रहे हैं, अब सही बताएं तो इन चारों का विचार था कि अंकल की जेब में जो पैसे हैं वो लूट लो और अंकल को चलती ट्रेन में फेंक दो। तो साहब मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये चेन खींची है, और विश्वास नहीं हो तो इस लड़के की जेब में 250 रुपए देख लीजिए आप। जब पुलिस ने उसकी जेब में हाथ डाला तो 250 रुपए निकले, चारों चले गए जेल, गोविंद आए। लेकिन राम जी सत्य की रक्षा के लिए सत्य का ही सहारा लेते हैं, और सत्य हमेशा अकेला होता है, सत्य हमेशा अकेला होता है। सत्य के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, सत्य के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, सत्य के पास जय जयकार करने के लिए लोग नहीं होते, सत्य के पास ना प्रचार होता है ना प्रसार होता है। भगवान बाबा पर अनेक बार आरोप लगे, पर भगवान का कोई भी भक्त या भगवान ने अपने किसी भक्त को नहीं कहा, उनके पूरे विश्व में कितने भक्त हैं चाहे तो क्या नहीं कर सकते। पर बाबा ने सिर्फ एक उत्तर दिया कि मैं यहां पर जबान दराजी करने नहीं आया हूं, मैं तो अपना संदेश देने आया हूं। और भक्तों को कहा कि सुनो मेरे भक्तों, मैं सत्य हूं, मेरा नाम सत्य है और मेरा काम सत्य है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाबा सत्य हैं, उनका नाम सत्य है और उनका काम सत्य है। राम जी ने सत्य की रक्षा सत्य के ही माध्यम से की। तो जब युद्ध हो रहा था राम और रावण का, तो विभीषण जी के मन में प्रश्न उठा कि रावण रथी बीरथ रघुबीरा, लंकेश तो रथ पर सवार है, दिव्य रथ पर सवार है, राम जी जमीन पर लड़ रहे हैं, धरती पर लड़ रहे हैं, लेकिन सत्य अकेला होता है, सत्य के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, कोई जय जयकार करने के लिए लोग नहीं होते, किसी प्रकार का रथ सत्य के पास नहीं होता, और असत्य के पास अनेकों लोग होते हैं, अनेकों प्रमाण पत्र होते हैं। पर पता है सत्य अकेला है, नग्न है, भग्न है, जिस भी स्थिति में है उसके पास कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, लेकिन सत्य कहता है मेरा होना ही अपने आप में प्रमाण है, मेरी उपस्थिति ही अपने आप में प्रमाण है। और असत्य चाहे कितने भी साधन जुटा ले, कितने भी संसाधन जुटा ले, असत्य कुछ नहीं कर सकता। भगवान के विषय में जितना लोगों ने कहा, भगवान का कार्य उतना ही बढ़ता गया। जितने लोगों ने भगवान की आलोचना की, भगवान का कार्य उतना ही अधिक 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 बढ़ता गया। निंदा से यदि सत्य दबता, आलोचना से यदि सत्य दबता, तो आज भी हम गुलाम ही रहते। हमारा देश स्वतंत्र क्यों हुआ, क्योंकि सत्य हमारे साथ था। गांधी की लाठी में क्या था, सत्य था। सुभाष चंद्र बोस के पास क्या था, सत्य था, नैतिकता थी। राम जी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य को साथ में लेकर लड़ रहे हैं। इसलिए राम जी ने विभीषण से कहा कि चिंता मत करो, धर्म के रथ पर मैं आरूढ़ हूं, नैतिकता के रथ पर मैं आरूढ़ हूं, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। और रावण, रावण अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, रावण अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए लड़ रहा है, रावण एक ऐशना के लिए लड़ रहा है। रावण इतना जिद्दी है कि वो किसी की बात नहीं मानता, पत्नी ने समझा लिया, पुत्र ने समझा लिया, मित्रों ने समझा लिया, नानाजी ने समझा लिया, सबने समझा लिया, पर रावण किसी की बात नहीं मानता। स्वयं भगवान शंकर ने समझा दिया कि ये राम है, स्वयं रामेश्वर ने आकर कहा कि ये मेरे भी ईश्वर है। महामंत्र जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर किसका जाप करते हैं, वो कौन सा महामंत्र है? राम राम राम, इसी मंत्र का तो जाप भगवान शंकर करते हैं। महामंत्र शंकर जी राम जी का ध्यान करते हैं और राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। लेकिन रावण को, रावण के अंदर विकृति क्या है? अनेक विचारक कहते हैं कि रावण धार्मिक था, रावण आध्यात्मिक था, रावण मुक्ति चाहता था, यह भक्तों की दृष्टि है। यथार्थ यह है कि रावण उस समय कामांध हो रहा था, रावण मोहित हो गया था भगवती के ऊपर। रावण चाहता था कि अब मैं जिद पर तो अड़ी गया हूं, अब विनाश तो हो ही रहा है, अब नाश तो हो ही चुका है, अब सर्वनाश और हो जाए। इस पार या उस पार अहंकारी व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, अपने मैं को ही मानने वाला व्यक्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी ऐशना की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक चला जाता है, किसी भी सीमा तक चला जाता है। और अच्छा व्यक्ति वो है जिसकी इच्छाएं सात्विक हों, अच्छा व्यक्ति वो है जिसके उद्देश्य सात्विक हों, जिसका लक्ष्य सात्विक हो। और सबसे पहले यदि हमारा साध्य सात्विक है, यानी हमारा साधन भी सात्विक है। लोगों का उद्देश्य हो गया आजकल तो खाओ पियो ऐश करो, खूब आराम से भोजन करो, कहीं भी जाओ अजी, और दान देने में क्या है? किसी भी संस्था में जाकर, धार्मिक संस्था में जाकर दान दे देंगे, धन शुद्ध हो जाएगा। खूब इनकम टैक्स की चोरी करो, खूब झूठ बोलो, खुद भी बोलो, वकीलों से भी बुलवाओ, और जाकर किसी धार्मिक संस्था में दान कर देंगे। पर बाबा ने ऐसा नहीं किया। देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति, बाबा के पास बहुत लंबा चौड़ा चेक लेकर आए 200-300 करोड़ का, और स्वामी के चरणों में रख दिया कि बाबा स्वीकार करें। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा धन गंदा है, बुरा है, अनीति का धन है। एक व्यक्ति को सताकर, एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर, अंतिम समय था, उसकी सारी संपदा इस व्यक्ति ने रख ली थी, और इसने सोचा कि आधा तो मैं सत्य साई बाबा को दान कर दूं, आधा मैं रख लेता हूं। भगवान ने कहा नहीं, मेरा धन, मेरा जो सेवा का कार्य है वो अनैतिक ढंग से नहीं, बल्कि जो मेरे भक्त जो स्वाभाविक रूप से सेवा में अपने आप करते हैं उससे ही मेरा कार्य चलेगा, उससे ही मेरा कार्य आगे बढ़ेगा। सत्य साई सेवा संगठन की गतिविधियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी अधिक है, और हमारे जामवंत जी श्री एस के सचदेवा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने पत्र लिख लिखकर, पत्र लिख लिखकर, पत्र लिख लिखकर, कितने पत्र लिखे होंगे जीवन में, आप गिनती अगर जोड़ें तो गिनती जोड़ना असंभव है। यहां कई संस्थाओं के लोग बैठे हैं, कई विचारधाराओं के लोग बैठे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि राम राम कर सब घर चले गए, समाज को क्या मिला? भागवत कथा तो हमने सुनी, मानवता को क्या मिला? क्या भूखे के पेट में भोजन चला गया? जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसे क्या पुस्तकें उपलब्ध हो गई? जो वृद्ध लोग हैं, अकेले हैं, क्या उनको आश्रय मिला? जो नारायण हमेशा भूखे रहते हैं, जिनके बच्चे भूखे रहते हैं, कुपोषण के शिकार रहते हैं, क्या उन्हें पोषित आहार मिला? नहीं मिला। लेकिन सत्यसाई सेवा संगठन एक ऐसा कार्य करता है कि भूखों को भोजन देता है, विद्यार्थियों को पुस्तक देता है, बीमारों के लिए दवा देता है, और दवा देने, दवा ऐसे नहीं देते लो लो लो, वो चार पांच फोटोग्राफर बुला लिए कि खींच लो फोटो हमारे, नहीं, दवा देते हैं हमारे साईं भक्त, और प्रेम से हाथ फेर कर, उनके सर पर हाथ फेर कर, हाथ जोड़कर कहते हैं साईं राम दादा, साईं राम दादी, सुनो जल्दी से ठीक हो जाओ, दवा तो उतनी काम नहीं करती, लेकिन हो सकता है इनका साईं राम उससे ज्यादा काम कर जाता है। वो भी हमसे कह रहे थे सचदेवा साहब 2-3 दिन पहले कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और हम सुनकर चुप हो गए उस बात को, हमने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनको अब इस व्यास गाड़ी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ लोग कभी वृद्ध नहीं होते, वो हमेशा युवा होते हैं। श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ लोग कभी वृद्ध नहीं होते। राम कल भी युवा थे, राम आज भी युवा हैं, राम भविष्य में भी युवा रहेंगे। तो नैतिकता का युद्ध है राम और रावण युद्ध, धर्म का युद्ध है राम और रावण युद्ध, अंतर्द्वंद है राम और रावण युद्ध। आंतरिक भूमि की पृष्ठभूमि पर हमेशा अंतर्द्वंद होता है, अंतर युद्ध होता है। ऑफिस में बैठे बैठे हजारों की हम रिश्वत लिए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, हम तो रोज श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, हम तो श्रीनाथ जी भी गए हैं, हम तो बालाजी भी गए हैं, हम तो अनेक तीर्थ स्थानों पर घूमकर आए हैं। अरे वाह, देखिए हमारे गले में रुद्राक्ष है, मोती की माला पड़ी है, वैजंती पड़ी है, देखिए हम तो कितने सज्जन आदमी हैं। दूसरे का पेट काटकर भगवान को तुम कैसे संतुष्ट कर सकते हो? दूसरे को धोखा देकर भगवान को तुम संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने आचरण का फूल परमात्मा के सामने चढ़ाओ, अपने चरित्र का फूल परमात्मा के सामने चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी ये वाले पत्र और फूल नहीं, यो माम भक्त्या प्रयच्छति, ये पत्र ये पुष्प नहीं। नैतिकता का पुष्प, आचरण का पुष्प, सत्य का पुष्प, व्यक्तित्व का पुष्प राम जी के चरणों में चढ़ाओ। कौन कहता है राम आते नहीं? राम तो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे, राम तो आपके पास स्वयं चले आएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त, बहुत अच्छे भक्त, रोज भगवान को पुष्प चढ़ाते थे, कमल का पुष्प लेने के लिए दुकान पर गए। एक यवन उधर से आया, उसे एक वेश्या से प्रेम था, उसने सोचा कि आज उसके लिए एक सुंदर पुष्प ले चलूं, कमल का पुष्प देखकर प्रसन्न हो जाएगी। भक्त तो अपने भगवान को रोज पुष्प चढ़ाता था, उसका प्रतिदिन का नियम था, अच्छा सेठ था, अच्छा व्यापारी था। तो वो गया, भैया ये कमल का पुष्प कितने का है? बहुत पुरानी बात है। उसने कहा एक रुपए का। कहा लो। कहा सेठ जी रोज तो आप गुलाब के ले जाते। बोले नहीं, आज मैंने सोचा ठाकुर जी को यह पुष्प अर्पित करता हूं। इतने में यवन आया कि अरे कमल का पुष्प है? बोले एक ही था, वही सेठ जी ले जा रहे हैं। कहा कितने का है? बोले एक रुपए का। कहा मैं 10 रुपए दूंगा, मुझे दो, मुझे मेरी प्रेयसी को ये देना। भक्त ने सोचा कि ये प्रेयसी के लिए 10 रुपए दे सकता है तो क्या मैं अपने भगवान के लिए 20 रुपए नहीं दे सकता? भक्त ने कहा ये 20 रुपए ले, ये फूल मैं ही रखूंगा। यवन भी जरा संपन्न था, उसने कहा 100 रुपए ले, ये पुष्प मैं रखूंगा। भक्त ने कहा ये मानेगा नहीं। भक्त ने कहा 1000 अशर्फियां, ये पुष्प मैं रखूंगा। यवन ने कहा 10,000 अशर्फियां, ये पुष्प मैं रखूंगा। तो भक्त ने कहा कि 1,00,000 अशर्फियां, ये पुष्प मैं रखूंगा। यवन थरथर कांपने लगा कि 1,00,000 अशर्फियों में इसने पुष्प खरीद लिया। यवन चुप हो गया, लौट गया। भक्त ने अपनी पूरी संपत्ति बेच डाली, अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले, वो पुष्प खरीदा और खरीद कर अपने घर के मंदिर में गया, क्योंकि घर बेच चुका था, घर बिक चुका था। इसलिए आंखों में से आंसू आ गए कि ठाकुर जी इस घर में ये मैं आपको अंतिम पुष्प चढ़ा रहा हूं, अब मेरी झोपड़ी जो बनेगी उसमें भी आप पधारना। जैसे ही वो पुष्प चढ़ाया, उस रोते हुए भक्त के सामने भगवान प्रकट हो गए। उस रोते हुए भक्त के सामने भगवान आ गए और भगवान लाखों लाखों अशर्फियां लेकर आए साथ में। और भगवान ने कहा कि तू चिंता मत करना, मैं तुझे बिकने नहीं दूंगा। जो मुझे मानता है, जो मुझे जानता है और जो मुझसे डरता है, वो संसार में किसी से नहीं डर सकता। जो मुझसे प्रेम करता है, जगत उसका विरोध कर ले, पर यदि मैं अनुकूल हूं, मैं उसके साथ हूं, तो जगत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भक्तों की दृष्टि तो धार्मिक दृष्टि होती है, नैतिक दृष्टि होती है, संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तुकाराम की पत्नी जरा खतरनाक है, रात दिन चिल्लाती रहती है। एक दिन गन्ना लेने भेजा, तुकाराम जी महाराज गए गन्ना लेने और रस्ते में कोई भिक्षुक मिल गया कि दादा आधा गन्ना हमें भी दे दो। तुकाराम जी ने कहा आधा आप ले लीजिए। आधा गन्ना लेकर आए, पत्नी ने कहा मैंने पूरा मंगाया था और तुम आधा लेकर आए। बोले अब देवी अब आधा भिक्षुक को दे दिया, उसमें भी अपने विट्ठल ना थे। पत्नी को गुस्सा आया और वो गन्ना तुकाराम की पीठ पर दे मारा। तो तुकाराम जी विट्ठलनाथ के मंदिर में गए और कहने लगे हे मेरे विट्ठलनाथ, हे मेरे पंडरीनाथ, आपकी बड़ी कृपा ठाकुर जी, ऐसी पत्नी दी जो बार बार कलह करती है, झगड़ा करती है, विवाद करती है। तो मुझे ये स्मरण हो आता है कि इस जगत में तो केवल एक ही सत्ता है जो मुझसे प्रेम करती है, वो है आप, वो है मेरे भगवान, वो है मेरे विठ्ठलनाथ। और एकनाथ जी महाराज की पत्नी सेवा करती है, सेवा में लगी रहती है, जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो पूजा की सामग्री लेकर आती है, आसन बिछा देती है, पूजा के कक्ष को लीपती है, बुहारती है। तो एकनाथ जी महाराज भी विठ्ठलनाथ जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे विठ्ठलनाथ जी, आपकी बड़ी कृपा, आपने ऐसी पत्नी मुझे दी जो सेवा करती है, जिससे मुझे साधना में अनुकूलता होती है, जिससे मुझे सेवा में अनुकूलता होती है, जिससे मुझे भजन में अनुकूलता होती है। एक की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, और एक की परिस्थितियां अनुकूल हैं, वो भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है। राम जी ने रावण से एक बात कही कि रावण सुनो, लड़ने तो तुम आए हो, तुम्हारे स्वजातीय बंधु मारे गए, भाई मारे गए, मेघनाथ जैसा पुत्र मारा गया, पर मेरा आग्रह है रावण, मेरी पत्नी लौटा दो। रावण ने कहा कि सुनो राम, सीता को तो मैं मरे बिना नहीं लौटाऊंगा, कभी भी ऐसी जिद मत करिए जो जिद स्वयं को तो समस्या में डाले ही, हमारे साथ अन्यों को भी समस्या में डाले। इसलिए जो घर के प्रमुख हैं, जो घर के मुखिया हैं, वो एक चीज समझे, गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, वो सूत्र क्या है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा हो, मुख जैसा, मुख ग्रास स्वयं ग्रहण करता है किंतु उसका पोषण पूरे शरीर को देता है। इसी प्रकार से घर के जो प्रमुख लोग हैं, घर के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो जो भी निर्णय लें, उनके निर्णय से पूरे परिवार को लाभ हो, पूरे परिवार का शुभ हो, पूरे परिवार का मंगल हो, ऐसा प्रयास करें। मुख स्वयं ग्रास नहीं रखता, वो ग्रास का प्रभाव हाथों में भी जाता है, पेट में भी जाता है, पैरों में भी जाता है, मस्तिष्क भी पुष्ट होता है। इसी प्रकार से आपका जो निर्णय है, आप जो निर्णय लें, उस निर्णय से सब प्रसन्न हो, सब संतुष्ट हो, सबका हित हो। तो मुखिया ही जब उठपटांग निर्णय लेगा, गलत सलत निर्णय लेगा, तो परिवार तो विनाश की ओर जाएगा ही, सही ना। दशरथ जी ने एक गलत निर्णय लिया, पत्नी की बात मान ली, राम जी को वनवास दे दिया। तापर बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी वन में गए तो क्या हुआ, पूरी अयोध्या सुनसान हो गई। कहते हैं जब तक राम जी वन में रहे, किसी ने घर में दिया नहीं जलाया, किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, किसी के यहां संतान नहीं हुई, किसी ने कोई उत्सव नहीं मनाया। राम कितने लोकप्रिय हैं, राम की लोकप्रियता देखिए। सामने तो लोग कहेंगे अरे सर आइए, अरे सर आप तो बस पूछिए मत, पीठ पीछे कहेंगे हमारी गली में आओ तो बताएंगे तुम। पर जब राम जी वन में है, फिर भी राज्य के लोगों का उनके प्रति विश्वास, राज्य के लोगों की उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति स्नेह, कि उनके जाने के बाद भी किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, किसी ने घर में दिया नहीं जलाया, किसी के यहां संतान नहीं हुई, किसी ने उत्सव नहीं मनाए। उस दिन ही उत्सव मनाएंगे जिस दिन राम जी लौट कर आएंगे, जिस दिन राम जी अयोध्या में आएंगे। भयंकर हुआ राम रावण युद्ध, कहते हैं आज तक कभी ऐसा युद्ध नहीं हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और रावण मारा गया। मंदोदरी रोने लगी, भयंकर रोने लगी, तो राम जी मंदोदरी के पास आए और बोले कि सुनो मंदोदरी, रोने की बात नहीं है, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, मैंने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है, मैंने तो अनैतिकता को मारा है, मैंने तो अनीति को मारा है, मैंने तो अधर्म को मारा है। और सीता जी को वहां से लाया गया, पर राम जी लंका के अंदर नहीं गए, लक्ष्मण जी ने तो कहा कि जरा घूम तो आए, सोने की लंका है, आकर्षण होना स्वाभाविक है। पर राम जी ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका मुझे प्रभावित नहीं करती लखन, मुझे तो वही अपनी अयोध्या के गड्ढे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। और लंका का विनाश इसलिए हुआ, रावण का विनाश इसलिए हुआ, जिसका मूल, जिसके मूल में अधर्म होता है उसका अंत भी अधर्म में ही होता है, जिसका मूल अधर्ममय होता है उसके अंत का कारण भी अधर्म ही बनता है। लंका रावण की नहीं है, लंका तो कुबेर की थी, रावण ने जबरदस्ती उसे युद्ध कर कुबेर की लंका रावण ने छीन ली, छीना हुआ धन, जबरदस्ती लिया हुआ धन, जबरदस्ती किसी के धन को अपना बताने वाला व्यक्ति अधिक समय तक उस धन का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए आप देखें जितने चोर होते हैं, जितने डाकू होते हैं, अंत में लिखा था इनके पिताजी इस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी थे। क्या लिखा था अंत में? इनके पिताजी इस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी थे। अरे भैया, उन पिताजी ने इतना इतना गजब ढा दी कि घड़ा तो भराएगा ना। हमारे गांव में कहते हैं बरांदो गढ़ो, बरांदो पाप को गढ़ो, एक ना एक दिन तो जरूर फूटे वो। पाप का घड़ा जब भरा जाता है तो अपने आप फूट जाता है। बुरे ढंग से लंका प्राप्त की थी, वैसे ही लंका चली गई। वो लंकेश जिसको इंद्र भी प्रणाम करता था, वो लंकेश मृत्यु जिसके सामने लेटी रहती थी, वो लंकेश देवता जिसकी स्तुति करते थे, आज वो जमीन पर निरीह पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। उसके परिवार में रोने वाले भी समाप्त तो हो गए हैं, स्त्रियों के अलावा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो रोने वाला हो, सिर्फ विभीषण को छोड़कर। परिवार में जो रोने वाले हैं वो भी समाप्त तो हो गए हैं। देखिए अनीति का परिणाम, देखिए अधर्म का परिणाम कि अंत में कोई रोने वाला भी नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि अधर्म का आश्रय ना लें, और भगवान से भी प्रार्थना करें। वृंदावन के संत कितना सुंदर भजन गाते हैं, कितनी सुंदर प्रार्थना है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा कर धूल जो मिल जाए, कर सच कहता हूं मेरी सच, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी सच कहता, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन जितना इसे समझाऊं, जितना
चल जाए राधे तेरे चरणों की सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते
रावण ने इतने पाप किए लेकिन कारण था एक बार बार राम जी का नाम लेता था ना भाय कुभाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। भाई खेत में बीज सीधा डालो चाहे उल्टा डालो आड़ा डालो तिरछा डालो फसल तो सीधी उगेगी। भगवान को चाहे मित्र मानकर भजन करो पुत्र मानकर भजन करो शत्रुभाव से भजन करो बंधुभाव से भजन करो भगवान के नाम का प्रभाव तो वैसे ही प्राप्त होता है। राम जी रावण का चिंतन नहीं करते 24 घंटे, वे तो सीता जी का चिंतन करते हैं। सीता को लेकर आना है अधर्म को हराना है, पर रावण रात दिन राम समुद्र पर सेतु बनाया राम ने बनाया, किसकी पत्नी हरकल लाया राम की पत्नी हरकल लाया, किससे युद्ध होने वाला है राम से युद्ध होने वाला है, भाई को मारा किसने मारा राम ने मारा, बहन के नाक कान काटे किसने काटे राम के भाई ने काटे, पुत्र को मारा किसने मारा राम ने मारा, मुझे किससे लड़ना है राम से लड़ना है, मुझे किसे जीतना है राम को जीतना है, राम 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 राम। जब उसकी जिव्या से बार बार राम नाम निकलने लगा तो राम नाम तो औषधि है ना। देखिए अब जहर जानकर खाओ चाहे अनजान कर खाओ, जानबूझकर जहर खाओ या अनजान कर खाओ, निश्चित नुकसान तो होगा। अमृत जान कर पियो या अनजान कर पियो, अमर तो हो ही जाओगे ना। तो राम जी का नाम मित्रभाव से लो या शत्रुभाव से लो, नाम का तो वो प्रभाव निश्चित प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बाबा को जो लोग भगवान मानते हैं उनका भी कल्याण होगा। जो लोग कहते हैं कि वो तो मंगलम गुरुदेवाय, उन्हें भी बाबा की प्राप्ति होगी। मंगलम ज्ञान दायिने, मंगलम परतिवासाय, मंगलम सत्य साई। और जो लोग कहें कि ये साईं बाबा ऐसे हाथ घुमाते हैं, ऐसे हाथ घुमाते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उन्हें भी बाबा की प्राप्ति होगी। बाबा सबके हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं उनसे भी वे प्रेम करते हैं, और जो उनसे प्रेम नहीं करते उनसे भी भगवान प्रेम करते हैं। माताओं बंधुओं, भगवान ने विभीषण को राजा बनाया और अयोध्या आए, अयोध्या आए तो महाराज उत्सव हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार, भरत की जटाएं बड़ी बड़ी हो गई हैं, नंदीग्राम में रह रहे हैं। एक भाई ऐसा भी है, भरत बस प्रतीक्षा में है राम जी आ जाए, राम जी आ जाए। और जैसे ही राम जी का पुष्पक विमान पर आ रहा है ना, जैसे ही विमान उतरा, सबसे पहले भरत जी गए और चरणों में लेट पड़े। अब लोगों को ये अंतर करना मुश्किल हो रहा है कि ये राम है कि ये राम है, दोनों की सूरत इतनी मिलती, दोनों सन्यासी वेश में। राम जी ने सबसे पहले भरत को स्नान कराया, फिर भरत ने राम जी को स्नान कराया, फिर दोनों ने मिलकर लक्ष्मण को स्नान कराया, जटाएं कटवाई, राम जी राजा बने, राम राज्य आया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बाबा के चरणों में यह कथा हुई। इस कथा का उद्देश्य था सत्य धर्म शांति प्रेम और अहिंसा आपके जीवन में आए। आपसे व्यास गादी को कुछ नहीं चाहिए, भगवान बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक अंतिम बात कि वो कि आपके जीवन में जितने दुख हो, जितनी पीड़ाएं हो, जितने संकट हो, जितनी आपत्तियां हो, वो स्वामी को दे जाएं, बाबा को दे जाएं, और जितनी प्रसन्नता हो, जितनी खुशी हो, जितना आनंद हो, वो भगवान के चरणों से अपने घर ले जाएं। यही इस कथा का प्रसाद है, यही इस कथा की सफलता है। अंत में भगवान के चरणों में समर्पित कि थोड़ा सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, न शर्माया करो, न घबराया करो। देखो दुखों में ना आंसू बहाया करो, हमेशा यूं ही मुस्कुराया करो। महाराज ये साईं मां का घर है, आया जाया करो, ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। इति ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम, जय साई राम। हमारे प्रांताध्यक्ष श्री एस के सचदेवा जी, हमारे सभी लोग साईं भक्त, जिन सब ने इस पुण्य यज्ञ में जो सभी लगे रहे, वे सभी बंधु बंधु माताएं, आप सब प्रसन्न रहें। और जीवन में एक अंतिम बात कि जीवन में एक बार कभी भी भगवान के अवतार को बहुत ज्यादा भगवान के अवतार को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक बार जीवन में कभी भी, साल में, दो साल में, चार साल में, एक बार व्यास गादी का व्यक्तिगत आपसे आग्रह है, भगवान सत्य साई बाबा का दर्शन अवश्य करें, प्रशांत निलयम जरूर लें। और हमारे साई भक्त जो सेवा के लिए जाते हैं उस सेवा में सम्मिलित अवश्य हों। ये रविवार को नारायण सेवा करते हैं, गुरुवार को भजन होते हैं, प्रशांति सेवा के लिए भी जाते हैं, अवश्य जाएं, अवश्य जाएं। सेवा का ये पुण्य समय हाथ से नहीं जाने दें। वाणी को विराम। भगवान आपके चरणों में सात दिन राम कथा हुई। आपकी वाणी, आप ही बोलने वाले, आप ही सुनने वाले, आप ही सुनाने वाले, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही रामायण हो, आपकी रामायण आपके चरणों में समर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आइए भजन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल।
शांति शांति शांति।
अभी आप श्री ऋतुराज जी महाराज से राम कथा सुन रहे थे। अब सुनिए कुमारी प्रियंका से एक कहानी। कहानी का शीर्षक है जीवन क्या है।
एक बड़ा शानदार समुद्री जहाज मेक्सिको के छोटे से गांव के तट पर आ लगा। उसमें से एक अमेरिकन यात्री उतरकर बाहर आया। बंदरगाह पर घूमते हुए उसे एक अधेड़ उम्र का मछुआरा दिखाई दिया जो बड़ी देर से धूप में बैठा था। अमेरिकी यात्री ने उस मछुआरे से पूछा, इतनी मछलियों को पकड़ने में तुम्हें कितना समय लगा है? मछुआरे ने धीरे से जवाब दिया, कोई ज्यादा समय नहीं लगा। उस अमेरिकन ने सीधे पूछा, तुमने और समय लगाकर और अधिक मछलियां क्यों नहीं पकड़ी? मैक्सिकन मछुआरे ने कहा कि इतनी मछलियां मेरे परिवार के लिए काफी हैं। उस अमेरिकन ने इस पर कुछ सोचकर पूछा, तुम खाली समय में क्या करते हो? मछुआरा बोला, मैं देर तक सोता हूँ, थोड़ी देर मछली पकड़ता हूँ, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, घर के काम में बीवी का हाथ बटाता हूँ, शाम के वक्त में अपने मित्रों से मिलने जाता हूँ, कुछ देर गिटार बजाता हूँ, गीत गाता हूँ, इस तरह आनंद से जीवन बिताता हूँ। उस अमेरिकन ने बीच में टोक कर कहा, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, तुमको अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़नी चाहिए, ज्यादा पैसा कमा लेने के बाद तुम अपनी फैक्ट्री लगा लेना, फिर इस छोटे से गांव को छोड़कर मेक्सिको, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क जैसे किसी बड़े शहर में भी रह सकते हो, वहीं रहकर अपना व्यापार चला सकते हो। मैक्सिकन मछुआरे ने पूछा, ऐसा करने में कितना समय लग जाएगा? अमेरिकन ने कहा, यही कोई 20 या 25 वर्ष का समय लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? मछुआरे ने पूछा। उसके बाद, बड़े जोश भरे शब्दों में अमेरिकन बोला, दोस्त, उस समय तक तुम एक बड़े व्यक्ति बन चुके होंगे, तुम्हारा व्यापार बहुत बड़ा हो चुका होगा, तब तुम एक स्टॉक खरीदने और बेचने का काम शुरू कर सकते हो, उसमें तुम्हें करोड़ों का फायदा होगा। करोड़ों? क्या मैं वास्तव में करोड़पति बन जाऊंगा? मछुआरे ने समुद्र की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या होगा? अमेरिकन बोला, फिर तुम रिटायर हो जाना, समुद्र के किनारे किसी छोटे से गांव में मकान बनवाकर रहना, देर से सोना, बच्चों से खेलना, थोड़ी सी मछलियां पकड़ना, शाम को दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। अमेरिकन के मुंह पर खुशी की झलक थी। उसे लग रहा था कि उसने मछुआरे को बेहतर ढंग से जीवन जीने का तरीका समझा दिया है और गांव के इस भोले आदमी ने उसे ठीक ढंग से समझ लिया है। मैक्सिकन मछुआरे ने अमेरिकन युवक की ओर देखते हुए धीरे परंतु विश्वासपूर्ण शब्दों में कहा, मेरे मित्र, यह तो मैं अब भी कर रहा हूँ, 20-25 वर्षों तक कठिन परिश्रम करने की मुझे क्या जरूरत है? अमेरिकन यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन में सोचा कि यह सीधा साधा लगने वाला व्यक्ति अनुभव में मुझसे कहीं आगे है। वह अपना सा मुंह लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर इस तरह जहाज की ओर लौट पड़ा जैसे उसे वापस जाने की बड़ी जल्दी हो। भगवान बाबा भी हमें यही संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा मत करो, भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष करो, आंतरिक संतोष तो भगवान से ही मिलता है। धन दौलत के पीछे भागना, भौतिक पदार्थों और विलासतापूर्ण जीवन से हमें कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। हाँ, इसके लालच में फंसकर जीवन अवश्य नष्ट हो जाता है। संतोषपूर्ण जीवन में ही सच्चा आनंद छिपा हुआ है। संसार में कौन मनुष्य सबसे धनवान है? वही जिसके जीवन में आत्मिक संतोष है, कौन मनुष्य सबसे गरीब है? जिस मनुष्य के मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, जिसके मन में वैभवशाली जीवन जीने की अनेकों प्रकार की वासनाएं छिपी रहती हैं। भगवान बाबा कहते हैं, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और परम आनंद प्राप्त करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सैराम।
इस कहानी के बाद अब सुनिए श्री कैलाश खेर से यह गीत।
हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, हजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, हजी शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बचपन से मैं भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, भाई अगर बम 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 लहरी, भाई अगर बम 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 लहरी। दिन भर तो तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर तो मैं भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं पूरा, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं पूरा, आज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा, तुझे पिलाऊं पिरगना दिया, तुझे पिलाऊं पिरगना, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी, शरण में ले लो भोलेनाथ मोय, अपनी बना ले दीनानाथ जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, भाई अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी, किस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, भसम रमाऊं धुनी रमाऊं, पांडव कर कर डमरू बजाऊं, गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभी संभल जा हे गोरारी, अभी मान जा हे गोरा, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खक्कड़ माला गले पड़ी, तो देखी सडर जावेगी, मेरे संतु क्या पावे, कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कमत राजा का ढूंढ, तो रानी बन के बैठ महल, तू रानी बन के बैठ महल, हरी संभल जा हे गोरारी, हाँ मान जा हे गोरारी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, भाई अगर बम 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 लहरी।
शंभो तान धर्म के तंबो, जो देखे कैड़ा उसकी आंख में चरिका फैड़ा, अरे अरे बम पहले गुरु पीछे हम, ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव,
ओम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु जटायुध हर शंकर शंभु भस्मदार, शिव शंकर शंभु, ओम शिव शंकर शंभु
शंकर शंभु भस्मदार शिव शंकर शंभो।
इस गीत के साथ ही हमारा आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम गुरुवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा। हिंदी कार्यक्रमों को डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindibroadcast पर संपर्क कर सकते हैं। जय साईं राम।